أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج انشاء اللہ تعالیٰ ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ رمضان کا استقبال کیسے کریں. ویلکم رمضان. رمضان 2023 کسی بھی جگہ میں سب سے پہلے ویلکم رمضان پروگرام ہوتا ہے, پھر اس کے بعد زاد الخیر ہوتا ہے, اور پھر دور قرآن ہوتا ہے. آپ تیار ہیں سارے سفر کے لیے؟ انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو جتنا بھی لیں گے اللہ ہمیں اس سے بھی زیادہ دے گا. ٹھیک ہے, تو شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. استقبال رمضان 2023. ہر سال رمضان کے استقبال پہ الحمدللہ پروگرامز ہوتے ہیں, تو آج اپنی زبان سے استقبال رمضان کا پہلا لیکچر جو 2023 سے متعلق ہے وہ ہے. آج کا ہمارا یہ لیکچر لاہور میں مسجد عثمان سے ہو رہا ہے, جہاں انشاءاللہ ہمارا دور قرآن بھی ہوگا. اللہ کرے کہ یہ ساری نعمتیں ہمیں جو ملتی ہیں ہم اس کا بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکیں اور اس سے خیر بھی لا سکیں. استقبال کس کا کیا جاتا ہے؟ جس کا انتظار ہوتا ہے. نہیں, خیر مہمان کا نہیں کیا جاتا, کچھ کی تو جان پہ بنی ہوتی ہے, ہائے مہمان آ گئے مہمان آ گئے. لیکن جس سے محبت ہوتی ہے, جن کے بارے میں انسان کا دل اٹکا ہوتا ہے کہ ہائے کب آئیں گے, دیر ہو رہی ہے, اب آ بھی جائیں نا. اور خاص طور پہ آپ کبھی بچوں کو استقبال کرتا دیکھا کریں, اور بچوں کو انتظار کرتا دیکھیں, ان کے دل چھوٹے سے ہوتے ہیں نا, تو ان سے صبر بھی نہیں ہو رہا ہوتا, ماما کب آئیں گے مہمان, اب کتنی دور ہیں, خود بھی کہیں جا رہے ہوں گے, تھوڑی تھوڑی دیر بعد پوچھیں گے ہم کدھر ہیں, اب کب آئیں گے, کتنی دیر ہے نا. تو رمضان سے اگر محبت ہے تو رمضان کا استقبال بہت اچھا ہوگا, اور اگر ہم رمضان سے محبت نہیں کرتے تو پھر وہ مارے باندھے والا مہمان, وہ جو سسرالی مہمانوں کے لیے ہوتا ہے انتظار. اب مجھے نہیں پتا کہ آپ رمضان کا انتظار ایک میکے کے مہمان والا بنا کے کر رہے ہیں یا سسرال والا, جو بھی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان میں ہمارے دل بڑے ہوتے ہیں. وہ شخص جو نماز روزے کا اتنا اہتمام نہ بھی کرے نا, وہ بھی رمضان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. کچھ روزے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں, کچھ تراویوں کے لیے, کچھ عمرے کے لیے, اور کچھ پکوڑے سموسوں کے لیے, کچھ سحریوں کے لیے, کچھ پراٹھا اور دہی اور لسی. کوئی بات نہیں ہے, جس طرح بھی کیجئے کیجئے تو صحیح نہ. تو رمضان حقیقت میں ہمارے دلوں کی بہار ہے. رمضان ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پورے قرآن میں کوئی اور کسی مہینے کا نام لے کر اتنا خوبصورت تعارف نہیں کرایا گیا جتنا رمضان کا تعارف کرایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان ایک ایسا خوبصورت مہینہ جس کا نام قرآن میں آ گیا, اور نام بھی آیا تو کس کے ساتھ آیا؟ قرآن کے ساتھ آیا. تو رمضان اور قرآن یہ دو ساتھ ساتھ رہنے والے دوست ہیں, ساتھی ہیں, سنگی ہیں, بیلی ہیں, آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے. جب بھی رمضان کا موسم قریب آتا ہے تو ہم اس وقت ذہنی طور پہ تیار ہو چکے ہوتے ہیں, اور آج ہم جس اینگل سے اس کو دیکھیں گے تھوڑا سا, وہ ہمیں سورۃ بنی اسرائیل کی آیت 81 سے ملتا ہے. وَقُلْ جَا الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے. سورۃ بنی اسرائیل آپ میں سے بہت ساروں کی فیورٹ سورہ ہو سکتی ہے, میری سورتوں کی طرح. مجھے بھی سورۃ بنی اسرائیل سے خاص محبت اور ایک الفت اور ایک عجیب سا تعلق قرب محسوس ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ سوراز ہیں, یہ وہ صورتیں ہیں کہ جو حقیقت میں ہمارے دلوں میں ایمان کا بیج ڈالتی ہیں, جن کے اندر سے ہمیں اسلامی شریعت کے ڈوز اینڈ ڈونٹس اور باقی چیزیں بھی ملتی ہیں, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, یا پچھلی قوموں نے کیا کیا تھا جو ہم نے نہیں کرنا. یعنی اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو آپ کو مجھے اس قرآن میں نظر آتی ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی فتح دی, تو اس فتح مکہ سے پہلے یا اس فتح مکہ کے قریب کا جو دور تھا, اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جو 21 سال کی محنتیں تھیں, مشقتیں تھیں, जो चारों तरफ से कुफर और कह लीजिए कि शिर्क और गंदगी और खराबी के जो बुत है ना वो टूटने लग गए हैं, तो उतने में एक आवाज आती है कि वकुल जाल हक व जहक अल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका, हक आ गया है बातिल चला गया। 13 साल मक्का का दौर बहुत ही जुल्म और बर्बरियत सहने का दौर था, परसिक्यूशन थी, वल फितना तो शद्दु मिनल कत्ल वाली बात थी। कभी बीबी सुमैया की कहानी आप पढ़ते हैं, तो कभी हजरत बिलाल के ऊपर जुल्म और सितम की कहानी पढ़ते हैं, और कहीं आपको हजरत उमर फारूक जैसे जियाले लोगों के मुसलमान होने की खबरें मिलती हैं, और कहीं हमजा मुसलमान होते हैं। यानी मक्का का जो 13 साल दौर था ना, वो बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि इस तरह का दौर था कि जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि कोई बहुत ज्यादा मुसलमानों की से नहीं थी। हर दिन हर मौका ऐसे लगता था कि हर दिन कोई नई कहानी, हर घर में एक शोर मचा हुआ है, एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी चीजें कि जिसके बारे में आप सोच में पड़ जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं है। और उतने में एक आवाज आती है कि अल्लाह ने इन्ना फतह न लका फतह मुबीना। सुलह हुदैबिया के सफर से वापसी पे अल्लाह ने सूरह फतह की जो आयात नाजिल करवाई कि हमने आपको फतेह मुबीन दे दी, तो लोगों ने उस वक्त तो नहीं समझा कि यहाँ तो आज हम दब रहे हैं, आज तो हम बिल्कुल भी किसी भी किस्म की कोई बात अपनी मनवा के नहीं आए। दूसरी तरफ कह लीजिए कि वन साइडेड सुलह कर ली और अल्लाह के नबी सल्लम की बात मानी नहीं गई, बस आप तो ऐसे ही पता नहीं क्यों बातों में आ गए। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि आज एक ऐसी तारीख बनने वाली है कि जिसकी मिसालें दी जाएंगी। किस्सा मुख्तसर, 2 साल के अरसे के दौरान ही लोग खुद भी अपनी शर्तों पर कायम ना रह सके और हालात ऐसे बन गए कि मक्का फतह हो गया। फतेह मक्का क्या थी? हक की फतह थी। आप और मैं जो ही रमज़ान आ जाता है तो हम रमज़ान के बारे में बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं नहीं ये टाइम ठीक नहीं, हमने सोना है, नहीं नहीं वो टाइम नहीं, ये हमारे इफ्तारी बनाने का वक्त है, नहीं 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 हम जा के नहीं सुन सकते, हम घर से ही सुन लेंगे इसलिए कि उस वक़्त हमें जाना मुश्किल लगता है। यानी कोई एक कहानी, कोई एक बात, हमारे यहाँ तो एक ऐसा तसव्वुर बनता जा रहा है कि रोज़ा रख के सो जाओ, नमाज़ें भी अल्लाह से माफ़ करा लेंगे, साहबा ने क्या कुछ नहीं किया। कभी आपने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस किया कि जितने बड़े कारनामे हैं वो कब हुए, कहाँ हुए? रमज़ान में हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जितनी बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला वो रमज़ान में डाली गई थी, उन्होंने कोई चूँ चरा नहीं किया। हमारे पेट भरे हुए, हमारे पेटों के अंदर इतना खाना है कि उसको हजम करने के लिए फिर कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी जगह नहीं होती, और हम फिर कहते हैं हम क्या करें, पराठे हम खा के सोते हैं। साहबा किराम ने मुझे नहीं लगता कभी अंडे पराठे के साथ रोज़ा रखा होगा, उनके पास तो सत्तू ही आ जाता तो बड़ी बात थी, खजूर ही आ जाती तो बड़ी बात थी। लेकिन हकीकत यह है कि पेट जितना भर जाता है ना, काम करना उतना मुश्किल होता है। इट्स ट्रू, अभी भी आप बड़े शौक से और शौक से बैठे यहाँ सुन रहे हैं ना, लेकिन आप देखेंगे कि जब नींद आने लग जाती है, जब पेट भरा होता है, अभी भी यहाँ आपको पराठे खिलाए जाए और कहा जाए बैठ के सोने, तो आधा वक्त आप सोए रहेंगे। क्यों? इसलिए कि भरे पेट के साथ नींद ही आती है। साहबा कराम ने अपनी जिंदगियों में वो बड़े बड़े कारनामे अंजाम दे लिए, इसलिए दे लिए कि उनके पेटों पे पत्थर बंधे हुए थे। आज हमारे पेटों पे पत्थर तो नहीं बंधे हुए, लेकिन हमें बेल्टें बांधनी पड़ती हैं पेट को कम करने के लिए। आज हम पेट पे पत्थर नहीं बांधते, लेकिन हम पेट को किसी न किसी तरह से दबा के रखना चाहते हैं ताकि क्या हो, पेट अंदर चला जाए। और उनको पेट पे पत्थर बांधने पड़ते थे कि पेट पिचक के, ये जो बीच में हमारे किसी काम के रास्ते में जो रुकावट बन रहे ना, ये ना रहे। वजह क्या थी? इस बात को महसूस कीजिए और आज के इस दौर के करने के कामों को महसूस करें। अमन भी है, चैन भी है, सब कुछ है, ना दुश्मन का खतरा, अल्लाह की रहमत ही है, भूखे तो कोई नहीं सोते। इसके बावजूद आज हमारी प्रोडक्टिविटी क्या है? आज हमें जब भी कभी दीन के किसी काम की दावत दी जाती है, दीन का काम क्या है आज हमारा? अपनी फायदे का काम है, अपनी दुनिया संवारनी, अपनी आखिरत संवारनी। अल्लाह ने अपनी नस्लों के लिए अगर हमें इस दुनिया में कोई एक अच्छा काम करने का मौका देना है तो हम उस पर परेशान हो जाते हैं, क्या करें जी, कैसे होगा, बहुत मुश्किल है, वो है, दिस एंड दैट। नहीं, वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। आपके मेरे पास तो हक आया हुआ है, हमें तो इस हक को पाने के लिए कोई मारे नहीं खानी पड़ी, कोई परेशानियां नहीं सहनी पड़ी। हम अपने आप को तो उस सारी चीज़ों के साथ रिलेट करें जिसमें सहाबाए कराम थे, तो हम तो शर्मिंदा हो जाएं। हमें तो अपने रोज़ों में से निफाक की बू आने लगे, हमारी तो तरावियों में से दिखावा और रियाकारी नज़र आने लगे, हमारी तो रस्मी रिवाजी नेकियां हैं और उसके ऊपर भी हमारा मान तो कोई देखे। क्या किसी दिन दही ना हो और रोज़ा रख लें, सारा दिन उसी को सुलवाते देते रहेंगे। प्यास लग रही है आज दही नहीं पिया, प्यास लग रही है आज लस्सी नहीं बनाई, आज पराठा नहीं खाया, आज इफ्तारी में सिर्फ आप एक दिन पकौड़े या समोसे ना बनाएं, मुंह लटक जाते हैं, बच्चों को लगता है उनका रोज़ा कबूल ही नहीं हुआ। अम्मी ने नहीं पकौड़े बनाए तो अल्लाह ने भी नहीं कबूल किए, बनाइए मना नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि हम हकीकत में देखें तो हम इस रमज़ान को जो भी हमारी ज़िंदगी में अल्लाह करे आ जाए। शाबान के महीने में हम दाखिल हो चुके हैं, दुआ कीजिए अल्लाह हमें रमज़ान में भी दाखिल कर ले। ये स्ट्रगल का महीना है, ये मेहनतों का महीना है, ये अपनी पिछली ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कराने का महीना है, क्योंकि एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान बीच के गुनाहों की माफ़ी है। रमज़ान असल में रूह की खुराक का महीना, आप कह लें कि रूह की आप यारी का महीना। अल्लाह ताला ने दो दस्तरखान रखे हैं हमारे सामने, एक ज़मीन का, ज़मीन क्या है, एक दस्तरखान है, टेबल क्लॉथ है, कि अनार कहाँ से निकल रहे हैं, सेब कहाँ से आ रहे हैं, अंगूर कहाँ से आ रहे हैं, इसी सूखी मिट्टी में से ही सब कुछ निकल के आ रहा है ना। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने इस ज़मीन से आपकी मेरी ज़रूरियात को पूरा करवाया, और हम इन सारी ज़रूरियात को पूरा करने के चक्कर में इतने बिजी कि हमें मौका ही नहीं मिलता कि हम कुछ और करें। रमज़ान में भी हम बहुत खाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रमज़ान में जो ड्यूरेशन बीच में लंबा कर दिया जाता है, उसी से कुछ ना कुछ हमारी स्पिरिचुअलिटी जो है वो बढ़ जाती है। कल मुझे कोई बता रहा था कि एक कोई नई डाइट है और उसका नाम ये है, मैंने कहा होती क्या है, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपको डाइट प्लान चूज़ करना पड़ता है, कम से कम ड्यूरेशन शायद 14 आवर्स था जिसके बीच में कुछ नहीं खाना, और इससे बढ़कर अब 22 घंटे तक भी कुछ ना खाएं तो आप बहुत जल्दी वेट लूज करेंगे, फिर यदि बाकी जो घंटे जो मर्जी खाएं। तो मैंने कहा रोजे क्या हैं, एक नॉर्वे के रोजे ले लें गर्मियों के और एक सर्दियों के ले लें, यानी आज आप रोजों को अगर सामने रखते हैं और आप देखते हैं कि अल्लाह ने फितरी तौर पर आपकी मेरी जरूरियात को पूरा करने के लिए ये सारा कुछ क्यों रखा भला, इसलिए रखा कि हम कुछ वक्त अपनी इस रूह को भी दे सकें कि जो हमारे जिस्मों में पड़ी हुई है। आज इस साल के रमज़ान के इस दिन में जो कि आने वाला है और हम उसकी तैयारी करने बैठे हैं, नियत कीजिए जो मर्जी हो जाए जैसा भी हो जाए हमने अपने स्पिरिचुअल लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है। इस साल का रमज़ान मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान होगा, बोलिए इंशाल्लाह। मैं पूरी मेहनत करूंगी इस रमज़ान के महीने से खैर को लेने की करूंगी, वक्त ज़ाया नहीं करूंगी, मेहनत करूंगी, और फिर सबसे बड़ी बात है कि कोई बड़ा काम करना। आज से ही दुआ मांग लीजिए कि अल्लाह इस महीने मुझसे कोई बड़ा काम ले ले, ऐ मालिक मुझसे कोई बड़ा काम ले ले। बड़े काम से मुराद ये नहीं होता जिसको हजारों लाखों लोग सुनने देखने लग जाएं, पढ़ने लग जाएं, लोग उसको जानने लगे। बड़ा वो काम होता है कि जिसके बाद आपसे कोई बाकी रहने ली नेकी हो जाए। बड़ा काम वो होता है जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमा लें, जिसके बाद आप इस पूरी दुनिया के ऊपर जिस वक्त रंग अमेजी हो चुकी है उससे हट सके। आप देखिए कि हर साल अगले से अगला फितनों का दौर बढ़ता जा रहा है। सिर्फ मैं दौरे कुरान 22 को ले लूँ और आज 23 पे मैं आ रही हूँ, और अगर अल्लाह ने मुझे मोहलत दी और मैं इंशाल्लाह आपको दौरे कुरान करा सकी, आप देखिएगा ना चाहते हुए भी 20% नई एग्जाम्पल्स होंगी। मैं खुद फील कर सकती हूँ यहाँ बैठकर कि दौरे कुरान 22 जो इससे पिछला था उसमें और इसके बीच में अब तक मेरे इल्म में कितनी नई चीज़ें आ गई, दुनिया में कितने नए रंग हो गए, दुनिया के हालात बदल गए, नए फितने सामने आ गए, परवरिश के, तरबियत के, बच्चों के, हालात के, और पूरी दुनिया का इस वक्त हाल क्या है कि वो गोल्ड प्लेटेड लोहा आपको सोना बनाकर दिखा रही है, असली पे नकली, नकली पे असली का रंग बनाकर दिखाया जा रहा है। जो ना खूब था वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, आज यही हो रहा है। आज हमारे बच्चों की सोचें बदली जा रही है, गैर महसूस किस्म का एक ऐसा जहर हमारी नस्लों को जो पिलाया जा रहा है। अगर यहाँ रहते हुए एक लेटर जो आपको भी मेरे लिए कोई 20 जगह से तो आया होगा, मुझे तो शायद इससे भी ज़्यादा जगह से आया, और लोगों ने पूरी कोशिश की कि मैं इस मौजू पे बात करूँ कि आपके इस मुल्क में इस वक्त जो आपके बच्चों के एजुकेशनल इदारे हैं ना, वो लोगों की सोच बदलने का जरिया बन चुके हैं। जहां से बच्चों की वो सोचें बदल के पेश की जा रही हैं कि जिनको अगर आप कह दें कि आप जैसे दोस्तों के होते दुश्मनों की क्या जरूरत है, और अगर आप रिसर्च करवा लें, तहकीकात करवा लें, कोई बात है जरूर। वो बच्चे जो स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, कॉलेजों में वो कोई डिग्री लेने जाते हैं, गैर महसूस तरीके से उनको गैर इस्लामी चीजें इस तरह कर करके दिखाई जा रही हैं कि कुछ तो सोचो, तुमने तो ये कभी नहीं सोचा होगा, तुम तो सोचो। बात सच है, हकीकत है। लोग आपके बच्चों को ये पैगामात ढके छुपे नहीं, अब आपको वो खुल कर दे रहे हैं कि भाई बहन का ताल्लुक भी अगर कायम हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। और मैं क्या कहूँ आपको, जरा सा सोचिए तो सही, इस पर हम कैसे पनपेंगे, हम कैसे जिएंगे? अगर आपने मैंने इस किताब को आम ना किया, हमने इस कुरान को आम ना किया, आज तो आपसे इस सोच से भी कहिए कि मैं दौरे कुरान क्यों करूं, मैं क्यों आऊं इस मस्जिद में रोज दौरे कुरान सुनने, मैंने पिछले साल भी तो कर ही लिया था ना, अब इसके बाद क्या है और उसके बाद क्या है और किस तरह से और मैं क्या ये करूं। तो मैं आपको बताने लगी हूं कि अगर आपने ये किताब आम ना की तो आपकी नस्लें बह जाएंगी, आपके घरों में भी आपकी बेटियां महफूज नहीं हैं। वो दौर चला गया अब जिसको आप पीछे करते हैं। फायदे की खातिर ये मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ के सुना देती हूँ, और उससे पहले कुरान की आयत, वला तलबिसुल हक बिल बातिल वतक्तुमुल हक व अंतुम तालमून, सूरत बकरा की ये आयत है 42। बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुशतबे ना करो, और ना जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश करो। ये किसी एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी का एक क्विज पेपर है जो मुझे आर्टिकल मिला, मैं एज इट इज पढ़ के सुनाती हूँ। आप ये सही है तो सही है, गलत है तो मेरा नहीं ख्याल के गलत है, लेकिन मेरी अपनी राय से ज्यादा आपके लिए इसमें एक आगही की जरूरत है। और आपसे इस कॉम्पैक्ट माहौल में बैठकर इस बात को करने का मकसद ये है, खुदारा अपनी आंखें खोले। कल महफिल में बैठे हुए किसी ने बताया कि 19 लाख रुपए एक साल की बच्चे या बच्ची की फीस जाती है कॉलेज में, जहां भी वो पढ़ रहा है, शायद डॉक्टर बन रहा है या क्या बन रहा है, प्राइवेट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। वो कहती है कि 19 लाख रुपए जमा करते हैं उनके फादर, और वो जमा करके किस्त देते हैं साल की, और फिर अगले साल के लिए जमा करना शुरू कर देते हैं। और वो जो बच्ची साथ थी वो खुद भी डॉक्टर थी, और दूसरी जो थी वो बता रही थी कि 5 साल में जब आप 19 19 19 करें और फिर ऊपर के जो खर्चे हैं, 2-2.5 करोड़ रुपए में एक बच्चा डॉक्टर बनता, जॉब फिर मेरिट पे नहीं मिलती। 19 लाख फीस देकर जो माँ बाप बच्चे को 5 साल पढ़वाएंगे, तो वो जॉब दिलवाने के लिए भी 8-10 लाख दे लेते हैं, उनके बच्चों को जॉब मिल जाती है। पहले सिफारिश से मिल जाती थी, अब सिफारिश से नहीं मिलती, अब पैसों से मिलती। और मैंने कहा कौन लेते देते, कहते वही जिन्होंने चूज करना होता है, खुद कहते हैं जाके बाहर हमारे क्लर्क से भावताव कर लीजिए, आपको किस रमजान की जरूरत है। मैं कहती हूँ आपको वो 2021 नब्बे वाले रमजान की जरूरत है इस वक्त, इन्ना फतहना लका फतहा मुबीना वाला। ये 1947 वाला पाकिस्तान ना पुराना हो गया, वाकई इस वक्त नए पाकिस्तान की जरूरत है। किसी का भी स्लोगन था ना ये आपकी सियासी जमातों में, हमें उससे नहीं कुछ लेना देना, हमें इतना पता है कि हमने इस मुल्क का हुलिया बहुत बिगाड़ दिया। हर साल रमजान आपको मुझे ये पैगाम देने आता है कि उठो इस कुरान को आम करो, तो पैगाम सुन लीजिए। ये लिखती हैं कि ये इस्लामाबाद के एक निजी यूनिवर्सिटी का अंग्रेजी का पर्चा है, सवाल पढ़िए। जूली और मार्क भाई बहन हैं, वो कॉलेज से गर्मियों की छुट्टियों में फ्रांस में इकट्ठे सफर कर रहे हैं। एक रात वो साहिले समंदर पर एक कैबिन में इकट्ठे गुजारते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि ये रात अगर वो प्यार करने में गुजार दें तो ये बड़ा पुरलुत्फ काम हो सकता है, कम अज कम ये इनके लिए एक नया तजुर्बा तो होगा। जूली पहले ही से यानी प्रिवेंशन की दवाइयाँ कि बेबी ना हो, माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती थीं, और मार्क भी कुछ ऐसी ही चीज़ें अपने पास रखता था ताकि हिफाजती इकदाम बरकरार रहें। दोनों ने बहुत लुत्फ उठाया और बहुत प्यार किया, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि ये बात किसी और को नहीं बतानी और ऐसा फिर कभी नहीं करना। ये रात इनका ख़ास सीक्रेट था और इसने इनमें मज़ीद क़ुर्बत पैदा कर दी। अब ये फजूल वल्गर एंटी कह लीजिए कि इस्लाम नहीं एंटी फितरा के सगे भाई बहन को इस तरह पेश करके, अब सवाल देखिए जो बच्चों से क्या पूछ रहे हैं। बताइए, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, बताइए क्या दोनों ने जो काम किया वो दुरुस्त था? आपने जवाब के लिए मुनासिब दलाइल भी दीजिए, अपने मुशाहदे की हद तक कुछ मिसालें भी दीजिए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मुमतहिन, मुमतहिन कौन है? इम्तिहान लेने वाले। मुमतहिन का जौक और इसके खानदानी मामलात क्या हैं, और इन सब का वाहमी मुशाहिदा क्या है, और इनमें कुर्बतों का आलम क्या है, और इन मुकामी जेंटलमैनों की वाहमी कुर्बतों की के हिफाजती इंतजाम क्या हैं, और तालिब इल्मों के लिए मुशाहदे की सहूलत मुयस्सर है या नहीं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, यानी इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, इनका जाती मामला है। लेकिन पाकिस्तान के तालीमी इदारे में ऐसा सवाल कैसे पूछा जा सकता है? क्या खुद लोगों के जहनों में बात डालने वाली बात नहीं? क्या ये स्पून फीडिंग नहीं? छोटे से बच्चे के सामने आप ऐसी फजूल बातें करेंगे तो क्या वो टीचर से या माँ बाप से कोई बात पूछेगा नहीं? ये लिखते हैं कि मुझे याद रहा है कि ऐसा ही एक सवाल अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पर्चे में भी पूछा गया था कि अपनी बहन के फिगर पर नोट लिखें। मुतलका शोबे के सरबराह से मैंने टॉक शो में सवाल पूछा तो वो कहने लगे इसमें क्या गलत था, यानी क्या बुरी बात है। मैं चाहते हुए भी ये ना कह सका कि आप अपनी बहन के फिगर पर ऑनलाइन गुफ्तगु यहीं फरमा दें ताकि बाकियों को मालूम हो कि ऐसे सवाल का जवाब कैसे लिखा जाता है, यानी तरीका सिखा दें। सवाल ये है कि ये महरम रिश्तों को जिनसी आलूदगी का निशाना बनाना और निशाना बनाया जाना किसकी हिकमत अमली है, ये सोचिए आप। अगर पर्चों में ये हालत है तो क्लासरूम का माहौल कैसा होगा? हुकूमत पाकिस्तान कहाँ है और क्या इसे याद रहे आइन के आर्टिकल 31 ने इस मामले में क्या रहनुमाई फरमाई है? तो लिहाजा रोशन ख्याल मुकामी जेंटलमैन अपने मामलात और ऐसी बातें तालीमी इदारों पर जो कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी मिसाल थी, आप सब तक पहुंची होगी क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की तरफ से ऐसी मैसेजेस आए। अब मुझे बताइए क्या कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्या दिन रात एक करना चाहिए कि नहीं, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, दुनिया में भी नूरे तौहीद का इतमाम अभी बाकी। लोगों को समझ ही नहीं आती कि लोग क्यों बोलते, लोग क्यों आराम नहीं करते, लोगों के पास मुश्किल क्या है। आप यकीन कीजिए कि जिसको आज उर्दू के एक बड़ी मुश्किल लफ्ज में बोलो ना कहतुर रिजाल, कहत कहते हैं ना जिसको उर्दू में कहत लफ्ज, कहतुर रिजाल है आज लोगों का कहत पड़ गया। इंसानों के रूप में सिर्फ मशीनें फिर रही हैं हमारे इर्द गिर्द, या खुद गर्जी के साथ या मजबूरियों के खाते में अपनी रोजी रोटी के काम करने के लिए दुनिया में सफेद पोश लोग बैठे हैं। वो लोग जो दूसरी दुनिया को सर्व करें वो बहुत थोड़े हैं। 3 दिन हो गए मुझे आपके सर को मुस्तकिल फोन पे डिफरेंट लोगों से बात करते, उनको किसी एक ब्रदर ने काम दे दिया कि एक हम कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो हमें उसके लिए मेल स्पीकर्स की जरूरत है, और फुला फुला उनको था कि हमारी फैमिली में चूंकि ऐसे लोग हैं तो उनसे किसी से रब्ता करवा दीजिए तो कोई हो जाए, अब इनके ऊपर कोई काम लग जाए सही अल्लाह का बंदा, एक को कर दूसरे को, खुद नहीं दूसरे के अलवा पूछ। और जिधर भी बात की अभी तक सब ने ये कहा कि हम बहुत बिजी हैं, हमारे पास पहले ही काम है। तो मुझे सुबह कहने लगे कि आप किसी को जानती हैं, कोई मेल, कोई ब्रदर, किसी ने एक ऐसी कॉन्फ्रेंस टाइप जगह रखी हुई है तो वो वहाँ डिफरेंट स्पीकर्स को बुलाना चाहते हैं, यानी कोई भी अवेलेबल नहीं है। कह तो रिजाल है, बाकी क्या कर रहे हैं आप? देखिए ना जैसे रमजान आता है ना उससे पहले भी, बल्कि पूरा साल ही अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो पूरा साल एक ही जैसा है अल्हम्दुलिल्लाह बिनेमती तितिम्मु सालिहात, एक दिन में 2 दफा भी कहीं जाना चाहे तो अल्लाह की रहमत से इसके मौके मौजूद है, लेकिन लोग नहीं है इतने आपके पास बाकी की तरह कि आपको मुझे दीनदार इल्म वाले हाफिज आलिम बेटे और बेटियां पैदा करने की जरूरत नहीं? या हमारे जो बच्चे हैं उनको हमने नहीं पढ़ा? आपको पता है कि इस मुल्क में कितने डॉक्टर बेरोजगार हैं? जोराबाद की खबर थी, उस दिन को बता रही थी कि मैंने कहा शायद पूरे पाकिस्तान की बता रही है, परसेंटेज बता रही हूँ कि जितनी दरख्वास्तें वो बच्ची बता रही थी कि आई थी और उसमें से जितनों को चूज करने थे वो रियली 5% था। 1 लाख कितने डॉक्टर्स बैठे हैं जोराबाद में जो जॉब लेना चाह रहे हैं, और जो हॉस्पिटल और जहाँ से वैकेंसीज निकलती हैं वो शायद फ्यू थाउजेंड है। तो कहती वो मेरिट पे तो मिलता ही नहीं, वो तो 8-10 लाख रुपए देंगे तो मिलेगा। ये सारे डॉक्टर अगर दीन वाले हो जाते, साथ दीन भी सीखा होता, उधर दुकान ना चली इधर चल जाती। हम ये सोचते हमारे बच्चे दीन पे आएंगे भूखे मरेंगे, चलो डॉक्टर बनेंगे तो 4-5 लाख रुपए तनख्वाह लगनी, मौलवी लग गए तो 20,000 से ज्यादा मौजिन को किसी ने पे नहीं देनी, साथ कहना मस्जिद भी साफ किया करो। लगा लब लग वो तिल। आपके इस पाकिस्तान को इल्म की जरूरत है, कुरान को आम करने की जरूरत है। आपके मर्दों ने माशाल्लाह जो कमाया है, अब महंगाई का दौर है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, फिर भी गुजारा हो जाना है। सारी बात है कि अगर चीजें महंगी होंगी तो वो जो कमा रहे हैं वो भी उसका महंगा कर देंगे। जो दुकानदार हैं उनकी तो लॉटरियां निकल आई, 4-4, 6-6 महीने के स्टॉक रखे होते हैं डॉलर के साथ, उनकी चीजें अंदर बैठी सोने की तरह डबल हो गई, उन्होंने झट से कीमतें बदल दी, चाहे कीमतें ऊपर दूसरी भी लगी हैं, क्योंकि कीमत बाहर से डॉलर बढ़ा, उन्होंने उसकी प्राइस को इंक्रीज करके आपकी ग्रोसरी और ये इंपोर्टेड फूड और ये जो बच्चे आपके खाते पीते हैं उसको बढ़ा दिया। लेकिन इस वक्त तो रिजाल है, ये सब कुछ आपका कब खत्म होगा? आपके मेरे, हम इस छोटे से पाकिस्तान को पूरी दुनिया का एक सिंबल समझ लें, जब तक हम कुरान को आम नहीं करेंगे, ये मस्जिद रहती दुनिया तक और आप और मैं रहती जिंदगी तक। इस कुरान के नूर को फैलाने की नीयत कीजिए। आपका मेरा काम इतना ही है। वो कहते हैं कि किसको है मान के हमारे कहने से बहुत कुछ हो जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जब आग चलाई जाती थी तो एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर के आग पे फेंकती थी, तो किसी ने उसका मजाक उड़ा दिया कि तेरी इतनी सी कोशिश से क्या होना है, यानी इतना बड़ा अलाव और तेरी चोंच का पानी। तो उसने क्या कहा था कि मुझे क्या लगे, मेरा तो ये दावा भी नहीं है। हाँ मैं ये जानती हूँ कि कल क्यामत के दिन अल्लाह को ये कह दूंगी कि अल्लाह मैं आग जलाने वालों में नहीं थी, बुझाने वालों में थी। आपने बचपन से ये बातें सुनी है, नकार खाने में तोती की आवाज़ कौन सुनेगा, चले हम तोतियाँ ही सही, ना सुने कोई हमारी बात, कल कह तो देंगे ना कि अल्लाह हमने इस दर्द को आम किया था। रिवायती पढ़ाई छोड़ दीजिए, रस्मी इबादत छोड़ दीजिए, ये जो नमाज रोजा हज है ये हमारी आदत बन चुकी है इस वक्त। इस साल आपने कुरान को ऐसे पढ़ना है कि वही बात है कि वल्लज़ीन आमनु शद्दुन हुब्बा लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से मोहब्बत में शदीद है। ये जो नबी सल्लम ने गिरोह तैयार किया था ना सहाबा किराम, ये कुरान पढ़ने वाले लोग थे, ये असहाबे सुफ्फा थे, ये रात के रहमान थे, दिन के फुरसान थे, ये रातों को अल्लाह के आगे रोते थे और दिन में दुश्मनों की आंखों में आंखें डालते थे। कौन थे? आपको पता है कि मदीना में कोई आर्मी थी? अफवाजे पाकिस्तान, नेवल और आर्मी और एयरफोर्स, मदीना की रियासत की फोर्स कौन थी किसको पता है? कभी आपने सीरा पढ़ते हुए, साहबा की जिंदगियां पढ़ते हुए कभी पढ़ा, कभी सुना कि ये जी स्टैंडिंग आर्मी है, ये फुला इनका खर्चा, इनकी रोटी पानी रखो? ये साहबे सुफा 70-80 लोग जो थे, ये कुरान पढ़ने वाले वक्त पढ़ने पे मुख्तलिफ ग्रोहों में भेजे जाते थे। कुरान वाली थी फौज, आर्मी थी, जुबानों पे इनके कुरान होता था जब तलवारें चलती थी, तभी तो सूरत निसा में अल्लाह ने इनकी नमाजों के तरीके तक बता दिए। सलातुल खौफ क्या था? थोड़े आगे चले जाएं, थोड़े पीछे चले जाएं, नबी के साथ जमात से बढ़। ये वो लोग थे जो मैदान जंग में भी जमात की नमाजें नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनको आदत थी। वो कहेंगे अल्लाह के नबी हम मैदान जंग में आए हैं तो हमारी नमाजें कजा रही हैं, हमें तो गिल्ट हो रहा है। आज जब तक आपके बच्चे यंग बच्चे उनके अंदर कुरान नहीं आएगा, बात नहीं बनेगी। पहली दफा हमारा एक कोर्स ऐसा ऑफर हुआ है कॉलेज में जोराबाद में कि मेरे सामने लड़कियां और उसी के दूसरा जो उनका कैंपस लड़कों का उधर साउंड सिस्टम था तो यंग बच्चे भी थे। आप सोच नहीं सकते कि जो दर्द और जो खुशी और जो मोहब्बत इसके मिले जुले जज्बात इस वक्त मेरे दिल में। पिछले वीक से अब तक मेरे कह लीजिए कि दर्द में भी कुछ सवा हो चुका होगा इजाफा, और ईमान और काम करने की अर्ज में भी इजाफा हो गया कि अभी बड़ी जरूरत है। आपको ऐसे लगने लगता है कि आपका इस खाना है और आप गिर्द गिर्द लोग कहत से मर रहे हैं, आपके इस पानी और लोग प्यास से मर रहे हैं, लोगों के घर टूट रहे हैं आपको पता है, और आप आराम से बैठे हैं। अल्लाह ने आपको कुरान पढ़ने के बाद समझ दे दी है कि मियाँ बीवी के टूटते रिश्ते को कैसे जोड़ना है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों को छोड़कर अपनी जाती जिंदगी में खो जाएं, थोड़े काम होते हैं, किसको नहीं होते, और क्या मिलता है उससे। लेकिन आप बस इस सारी बातों से ये समझें, आज इस चीज की नियत कीजिए कि हम जितने लोग यहां बैठे, हम में से हर एक ने 10-10 लोगों को एटलीस्ट अपने साथ लाकर दौरे कुरान कर, नियत करते हैं कि अपने कुरान को हम करना, इरादा ख्वाहिश तमन्ना, और एंड पे कहना नहीं इरादा ख्वाहिश तो बड़ी है बस टाइम नहीं है। आप देखिए कि हम मुसलमान बचेंगे ही तब जब हम ये सब काम करेंगे, और जितना ज्यादा हम इन चीजों को लेकर चलेंगे उतना अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारी ज़िंदगी का ये बेहतरीन रमज़ान हो। प्लानिंग कीजिए, इरादे कीजिए, कोशिश कीजिए, और जो भी चीज़ आपको जिस जगह से जिस तरीके से दी बेस्ट तरीके से मिल सकती है उसको लीजिए। और जब तक हम प्लान नहीं करते ना, हमारे काम फेल हो जाते हैं। अपना खुद मुहासबा करें, पिछले साल मैं कैसी थी, जिस समय ताकत ज़्यादा थी, कोई बीमारी थी कि नहीं, इस साल कैसी हूँ। आप पिछले एक साल से अपने इस एक साल को रिलेट करके देखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको सोचने का मौका मिलेगा। आप रमजान मोड में आ जाएं, जैसे आप जहाज में जाते हैं तो अपने फोन को एरोप्लेन मोड में कर देते हैं ना, इस तरह आप रमजान मोड में आ जाइए। ये जो शाबान का महीना है इसमें अपने छुट्टे हुए रोजे पूरे कर लें, क्योंकि अगला साल शुरू हो गया तो मैं भी कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ जाए, और इसमें शाबान में वैसे भी कसरत से नफिल रोजे रखे जाते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि जो भी अपने रोजे हैं वो पूरे कर लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबसे ये कबूल करे, रब्बाना तकबल मिन्ना इन्नक अंत समील अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंत तवाब रहीम, व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्किही व असहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन, आमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم اغفر لهيجنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا. اللهم من أحييته منا فهي للإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان کو دین دنیا میں کامیابیاں عطا فرمائے، شوہروں اور بیویوں کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں پہ رحم فرمائے، یا اللہ ہمیں بہترین صدقہ جاریہ بنا، ہمارے ماں باپ جو زندہ ہیں ان کو صحت اور عافیت علی زندگی دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، اور یا اللہ یہ رمضان ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنے، اور ہم ایک ایک سیکنڈ کا بہترین حق ادا کرنے والے بنے، ابھی سے ہی ہم اپنے کاموں کو سمیٹنے والے بن جائیں، اور وہ وقت جو ہمارا بعد میں مختلف چیزوں میں لگنا ہے ہم اس سارے کو ابھی سے پلاننگ کے ساتھ استعمال کریں، اور میکسیمم وقت ہم خیر کو پھیلانے اور دینے میں آ جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔